आज से हम क्रम में उत्पत्ति की पुस्तक के कुछ अध्याय को देखना चाहेंगे और उत्पत्ति की पुस्तक के 11 अध्याय को समझना बहुत ही अधिक अनिवार्य है। उत्पत्ति की पुस्तक में 50 अध्याय हैं और 50 अध्याय को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग है जो पहले अध्याय से लेकर 11 अध्याय तक है, दूसरा भाग है 12 अध्याय से लेकर 50 अध्याय तक है। लेकिन पहला भाग जो है, पहला भाग एक नींव है, आधार है, और तब उसके बाद 12 अध्याय में से हम आगे बढ़ते हैं। पहले दूसरे अध्याय में हम सृष्टि को देखते हैं, परमेश्वर किस प्रकार से सृष्टि कर रहा है। तीसरे अध्याय में हम परमेश्वर के देखते हैं कि किस प्रकार से उस सृष्टि के बाद पाप उत्पन्न होता है, पाप आता है, और पाप के कारण किस प्रकार से मनुष्य परमेश्वर से अलग होता है। लेकिन न केवल पाप का आरंभ है, परंतु पाप के साथ साथ तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है उसी अध्याय में। उत्पत्ति उसका तीसरा अध्याय, उसका तीन अध्याय, उसका 15 पद, उसमें परमेश्वर की एक प्रतिज्ञा है जो बहुत महत्वपूर्ण प्रतिज्ञा है। परमेश्वर की एक भविष्यवाणी है जो महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है, जो अंत तक चलती है, और परमेश्वर की एक आशीष है जिसको हम अंत तक देखते हैं। अभी हम तीसरे अध्याय के 15 पद में जाएंगे, क्योंकि वो जब भी हम बाइबल को खोलते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार आपको नई चीजें उसमें से मिलेंगी। तो तीसरे अध्याय में हम इस बात को देखते हैं कि पाप किस प्रकार से आता है और पाप किस प्रकार से फैलता है। चौथे अध्याय में अब पाप की बढ़ोतरी हो रही है। यद्यपि पाप आ गया, मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया, परमेश्वर से दूर हो गया, और उस पाप के कारण मनुष्य के ऊपर दंड की भी आज्ञा लग गई। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है जो प्राणी पाप करे वो निश्चय मर जाएगा। शुरुआत कहां से? उत्पत्ति उसके तीसरे अध्याय से। अब तीसरे अध्याय के बाद जब चौथे अध्याय में आते हैं, अब पाप किस प्रकार से बढ़ रहा और फैल रहा है, और फिर चौथे अध्याय में अब आदम की संतान उत्पन्न होती है और वो संतानें किस रीति से आगे बढ़ती चली जाती हैं। तो आदम की, जिसको आज हम देखना चाहेंगे, तो आदम के दो संतान हुई इस समय जिस पर हम विचार करेंगे। उसके बाद एक की हत्या हो जाती है, दूसरा किस प्रकार से उसके आदम से लेकर उसके अंत तक, कैन के अंत तक हम 10 पीढ़ियों को देखते हैं जो चौथे अध्याय में जिनका वर्णन है। जब पांचवें अध्याय में हम आते हैं तो फिर से आदम की एक और संतान होती है जो धर्मी संतान कहलाई जाती है, उससे किस प्रकार से फिर 10 पीढ़ियां उत्पन्न होती हैं, और उस 10 पीढ़ी के अंदर हम क्या संदेश को देखते हैं वो अगले इतवार को हम देखेंगे। फिर उसके बाद छठे अध्याय में जब हम आते हैं, मैं बहुत साधारण रीति से आपको याद दिलाने का, बड़ा सरल है उसको याद करना, 6, 7, 8, 9 ये 4 अध्याय ऐसे हैं कि पाप अब इतना अधिक बढ़ जाता है, तुरंत तुरंत नहीं हो रहा। 11 अध्याय तक लगभग 2000 साल का समय बीत जाता है, 2000 से कुछ ज्यादा समय। अब 6, 7, 8, 9 अध्याय में अब परमेश्वर दुखी है और इसलिए वहां पर नूह को जहाज बनाने के आता है। 5वें अध्याय में अंतिम पद में हम नूह को देखते हैं, नूह को का जन्म होता है। अब नूह के द्वारा जहाज बनता है और वहां पर फिर जो जल प्रलय है उसकी कहानी को देखते हैं, जल प्रलय की कहानी को देखते हैं। तब 10वें अध्याय में जल प्रलय समाप्त होता है, अब नूह के वंश आगे बढ़ते हैं। 10वें अध्याय में अब जितना भी अभी तक बना है, जितना भी बना है, सृष्टि बनी है, पशु बने, कुछ बच जाते हैं, बाकी सब का विनाश हो जाता है उस महाजल प्रलय के द्वारा। लेकिन उस जल प्रलय के साथ साथ परमेश्वर बाद में एक वाचा बांधता है। तब 10वें अध्याय में हम फिर से 10 पीढ़ियों को देखते हैं। अब वो 10 पीढ़ियां पूरे विश्व में फैलती हैं और उसी से जाति, कुल और राष्ट्र बनते हैं। इसीलिए मैंने कहा उत्पत्ति 11 अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट समझ लें, किस तरह से वो कुल, राष्ट्र, जाति फैलती हैं। वो 10 अध्याय को हम जब पढ़ेंगे तब देखे जाएंगे। तब जब 11 अध्याय में आते हैं तो 11 अध्याय में हम अब बाबुल के मीनार को देखते हैं। परमेश्वर ने कुछ और उत्पत्ति के आरंभ से कुछ और कहा था लेकिन वो नहीं हो रहा था। 11 अध्याय में कुछ है, तब उसके बाद क्या परमेश्वर करता है और तब उसके बाद उसी वंशज में आगे चल करके हम जब 11वें अध्याय के अंत में आते हैं तब हम वहां पर इब्राहिम को देखते हैं। अब 12वें अध्याय से इब्राहिम शुरू हो जाता, 12वें अध्याय से, और तब उत्पत्ति के शेष अध्याय में, पुस्तकों के उत्पत्ति पुस्तक के शेष अध्याय में तब हम 4 मुख्य पुरुष देखते हैं। सबसे पहले अब्राहम है, फिर इजाक है, फिर याकूब है, फिर यूसुफ है, और फिर इसके द्वारा फिर बाद में कहानी आगे बढ़ती चली जाती है, जिसको भैया ने अभी निर्गमन से रिलेट करा था कि किस प्रकार से मिस्र से परमेश्वर ने उनको छुड़ाया था, छुटकारे का संदेश फिर आगे बढ़ जाता है। तो ये उत्पत्ति की पुस्तक को समझने का सरलता से तरीका है। अभी मैं और अगर विस्तार से आपको समझाता तो 1 घंटे में हम पूरे 50 अध्याय को बहुत ही अच्छी रीति समझ सकते हैं। कई बार लोग कहते हैं हम पढ़ते हैं लेकिन समझ में नहीं आता क्योंकि इनमें नामों का वर्णन है और वंशज का वर्णन। सही बात है, कई बार मुश्किल होता है, पर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करिए, प्रभु समझ प्रदान करता है। और अब ये मत सोचिए कि मैं और आप फर्क हैं, हम आपके समान हैं, लेकिन सच है इन सब कुछ को सीखने के लिए अध्ययन की आवश्यकता होती है। कुछ टीकाकारों की पुस्तकों का सहारा लेना पड़ता है, उनसे सीखना पड़ता है, सब कुछ इस पे नहीं है। कुछ संदेशों को सुनना पड़ता है जो परमेश्वर के सेवकों ने दिए गए हैं, कुछ पुस्तकों को पढ़ना होता है जो प्रभु के सेवकों ने लिखे हैं, और उन सब कुछ से हम इन सारी चीजों को प्राप्त करने पाते हैं। तो जो कुछ भी आपके साथ मैं दिनों आगे शेयर कर रहा हूं या बांटना चाह रहा हूं वो परमेश्वर की दया से, परमेश्वर के अनुग्रह से, उस पर तरह तरह की पुस्तकों का अध्ययन है विभिन्न लेखकों के द्वारा, कुछ सेवक हैं जिनके हमने संदेशों को सुना है, पूरे विश्व के प्रसिद्ध सेवक हैं, कुछ टीका है, कॉमेंट्रीज हैं जिनको का अध्ययन करा है और उसके द्वारा परमेश्वर ने सिखाया है ताकि हम सीख करके आपको सिखा सके। एक चैनल है और ये परमेश्वर का वचन इसी रीति से बताता भी है, हम सीखते हैं और हम सिखा दे जाते हैं। ऐज़रा के लिए लिखा हुआ है और ऐज़रा ने परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना, पालन करना और दूसरे को सिखाना चाहा। तो हम सीखते हैं, पालन करते हैं और सिखाते हैं। सो ये थोड़ा सा मैंने समझाने की कोशिश करी। आइए अब आज 4 अध्याय में हम जाएंगे। अब क्या हुआ, 3रे अध्याय में पाप आ गया लेकिन परमेश्वर ने फिर भी अनुग्रह किया। और यदि आपको याद होगा तो मैंने आपके साथ जब 3 अध्याय खत्म किया था, मुझे नहीं मालूम कितना आपको याद है, तो प्रवचन को सुनिए सीखिए। अब 3 अध्याय जब समाप्त हो रहा है, आदम हवा ने पाप किया, परमेश्वर से अलग हो गए, परमेश्वर ने उन पर अनुग्रह किया है, परमेश्वर ने उनको दंड भी दिया है। परमेश्वर अनुग्रह करता है और अनुग्रह के साथ साथ दंड भी देता है। और अनुग्रह क्या करा परमेश्वर ने कि जब वे नंगे थे और अपने प्रयास से अपने तन को ढकना चाह रहे थे, अपने नंगेपन को ढकना चाह रहे थे, अपने पाप को ढकना चाह रहे थे, परमेश्वर ने वहां पहला बलिदान किया और चमड़े के अंगरखे बना करके उनके तनों को ढका। वहां पहली तस्वीर हम देखते हैं कि बिना बलिदान के मनुष्य के पाप से छुटकारा नहीं है, नंगेपन को ढापा नहीं जा सकता। पहली तस्वीर हम उत्पत्ति के उसके 3रे अध्याय में पाते हैं। और वही अभी हमने जब प्रभु भोज में भाग लिया वही चीज कम पूरा होते देखते हैं। तब उसके बाद वहां पर अब आदम के अंदर एक विश्वास उत्पन्न होता है जो उत्पत्ति उसके 3रे अध्याय में देता है। और तब वो हव्वा ने उसे अपनी पत्नी स्त्री का नाम हव्वा रखता है, विश्वास उसका अर्थ है, और परमेश्वर बढ़ता जा रहा है। तब 4थे अध्याय में आइए, हम थोड़े से पदों को पढ़ते आएंगे और देखते चले जाएंगे। आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, वो गर्भवती हुई, उत्पत्ति उसका 4 अध्याय पहले पसे। आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, वो गर्भवती हुई, कैन को जन्म देकर उसने कहा, मैंने यहोवा की कृपा से एक बालक को पाया है। कैन का जन्म जब हुआ हमने कैन और हाबिल की कहानी को बहुत सुना है, कई बार स्कूल में पढ़ाया, संडे स्कूल में पढ़ाया, लेकिन कैन का नाम का अर्थ परमेश्वर की आशीष है। यहोवा की ओर से मैंने एक पुरुष को पाया है, पाया हुआ जिसको परमेश्वर ने दिया, ये कैन के नाम का अर्थ है। ये सच है, सारी संतानें जो हमें परमेश्वर देता है वो परमेश्वर की आशीष है। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 127 और उसके 3 में, गर्व के देव बचे परमेश्वर के वरदान है और आशीष है, गर्व का फल यहोवा की ओर से होता है। सो परमेश्वर ने यहां पर आदम और हवा को आशीष दी और उसने उनका नाम, उसका नाम कैन रखा। दूसरा पद, फिर उसका भाई हाबिल को भी हवा ने जन्म दिया। अब दो भाई, कैन और हाबिल, ध्यान दीजिएगा, आदम शुरू से ही, जब आदम की सृष्टि की गई तो परमेश्वर ने आदम को खेत में रखा, बागवानी में रखा कि वो बागवानी करे। वो एक अच्छा किसान था, उत्पत्ति दूसरे अध्याय में आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा। और अब जब वो वहां से निकाल दिया गया तब भी वो खेती कर रहा है, तब भी वो अच्छा किसान है। अब कैन ने अपने पिता से अच्छी खेती करना सीखा है, जाना है, और वो भी एक अच्छा किसान बन गया, खेतीहर बन गया। लेकिन हाबिल, चार पद में, हाबिल ने भी अपने, हाबिल अपनी भेड़ बकरियों का चराने वाला बना। अब ये दो भाई हैं, एक कैन है और एक हाबिल है। कैन खेती करने वाला है, हाबिल भेड़ बकरियों को चराने वाला है, और इनका परिवार आगे बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन एक समय आया है, शायद हो सकता है आदम ने उनको सिखाया होगा कि नहीं, परमेश्वर ने तुम्हें आशीष दी है, तुम्हें परमेश्वर को कुछ के लिए कुछ करना है। अब ये परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाने के लिए जाते हैं, परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाना। और तब जब भेंट चढ़ाने जाते हैं तो लिखा हुआ है चार पद में, और हाबिल ने भी, बल्कि 3 पद में, कुछ दिनों के पश्चात ऐसा हुआ कि केन अपनी भूमि की उपज में से यहोवा के लिए भेंट लाया। 4 पद में, यहोवा हाबिल ने भी अपनी भेड़ बकरियों के पौलटों में से कुछ को चर्बी सहित भेंट चढ़ाया। जब हम कैन की भेंट चढ़ाने की बात करते हैं तो वहां लिखा हुआ है कैन ने क्या करा, अपनी भूमि की उपज से यहोवा के लिए भेंट चढ़ाई। लेकिन जब हाबिल की बात करते हैं तो हाबिल को केवल भेंट नहीं चाहिए, लेकिन उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, हाबिल ने भी अपनी भेड़ बकरियों के पैलोटों में, पहली बात, दूसरी बात, ना केवल पैलोटों में लेकिन में से कुछ को चर्बी सहित। अर्थात क्या मतलब है, जब वो भेंट चढ़ा रहा तो उत्तम भेंट चढ़ा रहा है, दो जन है, कैन भेंट चढ़ा रहा है, हाबिल भेंट चढ़ा रहा है, कैन अपने फसल की भेंट चढ़ा रहा है, अब हाबिल अपनी भेड़ बकरियों की भेंट चढ़ा रहा है। इसका मतलब क्या है, परमेश्वर को भेंट चढ़ाना ये आरंभ से है, ये परमेश्वर को भाता है, परमेश्वर के मन को संतुष्ट करता है। जब हम परमेश्वर को भेंट चढ़ाते हैं तो ये परमेश्वर के उपकारों को एक प्रकटीकरण है कि परमेश्वर आपने हमारे उपकार किए हैं। ये इस बात का प्रकटीकरण है कि परमेश्वर हमने आप ही से पाया है और आप ही को हम दे रहे हैं। ये इस बात का प्रकटीकरण है कि हम परमेश्वर के प्रति आभारी हैं, कृतज्ञ हैं। और ये सिद्धांत आज मेरे और आपके जीवन में भी लागू होता है। जब हम प्रभु को भेंट चढ़ाते हैं, चाहे अपने समय के द्वारा, चाहे अपने परिश्रम के द्वारा, चाहे अपने धन के द्वारा, जो कुछ भी हम जब भेंट चढ़ाते हैं तो परमेश्वर के प्रति हम कुछ को प्रदर्शित करते हैं। केवल यहां पर जो ऑफरिंग ली जाती है, केवल देना है, देना नहीं, ये आपकी तैयारी की जरूरत होती है इसमें, मेरे और आपकी। अभी हम कुछ बातों को देखेंगे। लेकिन जब भेंट चढ़ा तो क्या हुआ, लिखा आगे चल के, तब यहोवा ने हाबिल की और उसकी, हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण नहीं किया। कैन की भेंट को नहीं ग्रहण किया, इसलिए नहीं ग्रहण किया, ये कारण ये नहीं था कि वो साग सब्जी और ये खेत की चीजें लेकर आया था, उसके पास वही था इसलिए उसको वही चढ़ाना था, लेकिन इसलिए नहीं चढ़ाया उसको ग्रहण किया जो हाबिल था, क्योंकि भेड़ बकरे चर्बी लेकर आया था, जो उसके पास है वो उसको चढ़ा रहे हैं, लेकिन दोनों के चढ़ाने का तरीका है, दोनों के चढ़ाने की मनसा है, दोनों को चढ़ाने का हृदय है। शायद कैन अपनी भेंट के प्रति इतना गंभीर नहीं था, उसको यह ध्यान नहीं था कि मुझे अपनी फसल का जो प्रथम है वो परमेश्वर को चढ़ाना है, और इसलिए जब कैन बात कराता है तो शायद उसके पास जो बचा होगा या जो कुछ भी होगा याद आया मुझे चढ़ाना और लेके चढ़ा दिया उसने। प्रश्न ये है, क्या जब हम परमेश्वर को देते हैं, आज हम दशवांश की बात करते हैं, परमेश्वर तो दशवांश से ज्यादा की बात करता है वचन, लेकिन जब हम उसको देते हैं तो क्या हम बचे कुचे को देते हैं? पहले दूध वाले का दे दिया, अब घर वाले का दे दिया, दवाई वाले का दे दिया, दुकान वाले का दे दिया, सारे वालों को निपटाने के बाद जो बचता है तब हम परमेश्वर को देते हैं, क्या ये है? या हम जब हमें मिलता है तो सबसे पहले हम परमेश्वर के भाग को निकालकर अलग रखते, यह हमारी मनसा को दर्शाता, यह हमारी मनसा को दिखाता। इस संसार में चाहे कितना भी कोई धनी हो उसके पास धन कभी अधिक नहीं होता, लेकिन मन कैसा है? परमेश्वर, बाइबल में बहुत सारे उदाहरण है, नए नियम में हम जाते हैं उस स्त्री के बारे में, लुका में हम पढ़ते हैं जब वो दान दे रही थी, परमेश्वर उसको देख रहा था, उसने छोटा सा दान दिया था, लोग और बहुत बहुत दान दे रहे थे, लेकिन परमेश्वर उसके मन को देख रहा था, मन की तैयारी को देख रहा था। तो जब भेद हम देते हैं तो सबसे पहली बात ये, हम किस तैयारी से परमेश्वर को देते हैं, किस इच्छा से परमेश्वर को देते हैं, किस कृतज्ञता से परमेश्वर को देते हैं, किस समर्पण से हम परमेश्वर को देते हैं, किस भावना से हम परमेश्वर को देते हैं, ये है। और यहां पर इन दो जनों में सबसे बड़ी भिन्नता ये थी, एक हृदय की तैयारी से दे रहा है, एक अपनी खाना पूर्ति को पूरा कर रहा है। और जब परमेश्वर ने उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया, अब यहां से दूसरी कहानी शुरू होती है, पांच पद में, पांच से लेकर सात पद तक। परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण नहीं किया, तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसका मुंह उतर गया। कैन की प्रतिक्रिया, कैन अति क्रोधित हुआ और उसका मुंह उतर गया। अब उसके हृदय में कुछ गड़बड़ हो गया, उसने देखा कि मेरे भाई हाबिल की भेंट तो ग्रहण कर ली परमेश्वर ने, पर मेरी भेंट ग्रहण नहीं करी, और ऐसा होने के कारण अब उसके हृदय में एक ईर्ष्या, क्रोध, जलन, दाह ये उत्पन्न हो। पाप क्या हो रहा है? पाप बढ़ रहा है। हाबिल धार्मिकता का प्रतीक है और इसीलिए बाइबल में बार बार उसके लिए कहा, और खास उसे नए नियम में हाबिल के लिए कहा है कि उसने विश्वास के साथ धार्मिकता की भेंट को परमेश्वर के साथ चढ़ाया। दो बातें, एक विश्वास है और एक धार्मिकता है। इब्रानियों उसका 11 अध्याय उसके 4 पद में पढ़ेंगे, उसने हाबिल ने कैन से उत्तम भेंट को चढ़ाया विश्वास के साथ। अब कैन की स्थिति यहां पर बिगड़ रही है, कैन क्रोधित हो रहा है, कैन का मुंह उतर गया है, निराश हो गया है। अब परमेश्वर कैन के पास आता है, कैन किसी, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, परमेश्वर हर व्यक्ति से समान व्यवहार करता है, और तब परमेश्वर कैन से बातचीत करता है 6 पद में, और यहोवा ने कैन से कहा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर पहला असर उसको यह मिला था कि वो स्वेच्छा से होकर परमेश्वर की भेंट मन के अनुसार चढ़ाए, कैन को मिला था, लेकिन कैन उसमें असफल हुआ, पर फिर भी परमेश्वर ने अपने न्याय को, अपने दंड को एकदम से उसके ऊपर नहीं डाल दिया। परमेश्वर ने उसको दूसरा अवसर दिया और यह सच है। परमेश्वर मुझे और आपको जब भी हम अपने जीवन में गलत करते हैं एक अवसर दूसरा प्रदान करता है ताकि हम सोचें, विचारें, पश्चाताप करें और उसको छोड़ दें। हमेशा परमेश्वर अवसर प्रदान करता है और हमें उसके अवसर को तुच्छ नहीं जाना। लेकिन यहां पर क्या हो गया? तब परमेश्वर ने सात बातें परमेश्वर कैन से कही हैं और सात बार परमेश्वर कैन को संबोधित करते हुए तू, तेरा, तुझे ऐसे करके उपयोग कर रहा है। पहली बात, और यहोवा ने कैन से कहा तू क्यों क्रोधित है। पहली बात, तू क्यों क्रोधित है कैन, तू क्यों क्रोधित हो रहा है? अगर तेरी भेंट ग्रहण नहीं गई, तुझे मुझसे पूछना चाहिए था कि परमेश्वर तूने क्यों मेरी ग्रहण नहीं कर भेंट ग्रहण करी? क्या कारण है? मुझमें क्या कमी थी? क्या मुझे करना चाहिए था? क्या सुधार लाना चाहिए था? क्यों तू क्रोधित हो रहा है? परमेश्वर से पूछ रहा है। दूसरी बात, परमेश्वर क्या कहता है, और तेरा मुंह क्यों उतरा है, क्यों तू उदास है? दूसरी बात, तू क्यों क्रोधित है, तू क्यों उदास है? यदि तू भला करे तो क्या तू ग्रहण नहीं किया जाएगा? परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है? कैन, तेरे लिए अभी भी अवसर है कि तू भला कर ले। मैं तुझे दूसरा चांस दे रहा हूं, दूसरा मौका दे रहा हूं। तो अभी भी सोच, अभी भी पछताप कर, अभी भी जान ले, अभी भी पूछ ले, अभी भी समझ ले। अगर तू ऐसा करेगा तो क्या तू उसको ग्रहण नहीं किया जाएगा? कैन को तो उसी समय कहना चाहता, परमेश्वर मेरी आप सहायता कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए था। लेकिन कैन के अंदर किस चीज ने उसको पकड़ रखा था? उसके पाप ने उसको पकड़ रखा था, जो इसके में जीवन में बढ़ता चला आता। यही पाप की बढ़ोतरी को हम आगे चलते देखते चले आते हैं और उसके एक बात, खास बात को हम समझना चाहेंगे। तो उसके बाद क्या कहता है, यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर दुबका बैठा है। पहली बार पाप का शब्द यहां पर हम पाते हैं उत्पत्ति इन चार अध्याय में। पाप की क्रियाओं को हम देखते हैं, पाप के परिणाम को हम देखते हैं, पाप के तरीकों को हम देखते हैं, वो सब कुछ है, लेकिन पाप शब्द पहली बार यहां पर आया है। और उसके बाद धर्मी शब्द भी पहली बार हम आगे चल के देखेंगे, जो इसी अध्याय में आगे चल के आता है। तब वो कह रहा आगे चल के, और तेरी लालसा, पाप दुबका बैठा तेरी लालसा करता है, परंतु तुझे उस पर प्रभुता करना है। दो चीजें, या तो पाप तुझ पर प्रभुता कर ले या तू पाप पर प्रभुता कर ले। या तो पाप तुझ पर प्रभुता कर ले या तू उस पर प्रभुता कर ले। मेरे प्रियो, हम पाप पर अपनी शक्ति में प्रभुता नहीं कर सकते। यही कारण तो था कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आ गए, ताकि वो मेरे और आपके लिए बलिदान हो जाएं और सारे उस पाप के बोझ को, दंड को अपने ऊपर ले लें और मुझे और आपको वो जीवन प्रदान कर दें कि जब हम उस पर विश्वास करें, वो हमारे मन में आए, हमारे जीवन में वास करें, उसका पवित्र आत्मा हमारे जीवन में वास करें, उसका पवित्र वचन हमारे जीवन में वास करें। अब हम परमेश्वर की संतान होकर उसकी शक्ति, उसकी सामर्थ, उसके अधिकार में होकर हम पाप पर प्रभुता कर सकें। याकूब कहता है शैतान का सामना करो तो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा, लेकिन उससे पहले कहता है परमेश्वर के निकट आओ। पहले कहता परमेश्वर के निकट आओ, अर्थात क्या मतलब? बिना परमेश्वर के निकट आए हम शैतान का सामना नहीं कर सकते। शायद मैंने कभी आपको बताया होगा, एक बार एक छोटी बच्ची अपने घर में बैठी हुई थी और घर में बैठी हुई अपने कमरे में बैठी थी, धीरे से उसके दरवाजा खटखटाया किसी ने और उसको दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। उस बच्ची ने पूछा कौन 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 है दरवाजे पे, कौन है? उस शैतान ने कहा मैं शैतान। बच्ची दौड़ के दरवाजा खोल लेने गई। बच्चे ने जोर से चिल्ला के कहा, यीशु मसीह जाइए, जाकर दरवाजा खोल दीजिए प्लीज। उस बच्चे ने क्या करा, यीशु मसीह कृपया जाकर दरवाजा खोल दीजिए। क्या आप सोचते हैं, जब यीशु मसीह ने दरवाजा खोला होगा तो वहां शैतान सामना करने के लिए खड़ा रहा होगा। और यही परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप दो, परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त कर लो, परमेश्वर की उपस्थिति में आओ, तो वो तुम्हारी सहायता करेगा और तुम पाप पर प्रबल होने पाओगे। और हमें प्रतिदिन करना पड़ता है, ये हमें प्रतिदिन करना पड़ता है। मेरे और आपके लिए सबसे बड़ा अनुग्रह आज ये है कि प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ मेरे और आपके लिए उपलब्ध है, जो उस समय उनके लिए नहीं थी। लेकिन फिर भी परमेश्वर उसको मौका दे रहा है और उसे कह रहा है कि परंतु तुझे उस पर प्रभुता करना है। मेरे प्रियो, ये कैन की स्थिति थी। अब क्या हुआ, परमेश्वर ने उसको मौका दिया, उसने परमेश्वर की आवाज को सुनकर तिरस्कार कर दिया, उसकी आवाज को सुनकर अनसुना कर दिया। क्यों? उसके लिए इस समय परमेश्वर की आवाज धीमी थी, परंतु संसार की आवाज ज्यादा तेज थी, शैतान की आवाज ज्यादा तेज थी, पाप की प्रभुता की आवाज ज्यादा तेज थी। और मेरे प्रियो, यह संसार की भीड़ की आवाज कितनी बार इतनी ध्वनिपूर्ण होती है कि मुझे और आपको परमेश्वर की आवाज सुनने से वंचित कर देती है। और इसीलिए आप ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु मसीह ने जब आश्चर्य कर्म किए हैं अनेकों बार, प्रभु यीशु मसीह ने जब शिक्षाएं दी हैं, आप बार बार इस बात को पढ़ेंगे कि और प्रभु यीशु मसीह भीड़ से अलग हट गया, और प्रभु यीशु मसीह उनसे अलग हट गया, प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्य को उनसे अलग हटा के कमरे में ले गया। मेरे प्रियो, ये संसार की आवाजें, संसार के पाप की आवाजें, चाहे वो हमारे संबंधियों, चाहे हमारे मित्रों, चाहे हमारी नौकरी हो, चाहे हमारे परिवार हो, चाहे कुछ भी हो, उनकी आवाजें, हमारे पड़ोसी उनकी आवाजें हमें इतना अधिक भयानक और परेशान कर देती हैं कि परमेश्वर क्या चाह रहा है, परमेश्वर क्या इच्छा रखता है, परमेश्वर किस प्रकार से आशीष दे सकता है, परमेश्वर किस प्रकार से दूसरा अवसर दे रहा है, मौका दे रहा है, हम उसमें दूर हो जाते हैं। यह सबसे पहली बड़ी गलती कैन की, उसने परमेश्वर के दूसरे दिए हुए अवसर को तिरस्कार दिया। आठवां पद में, तब कैन ने अपने भाई हाबिल से बात की, और जब वो मैदान में थे तो ऐसा हुआ कि कैन ने लपक कर अपने भाई हाबिल को मार डाला। क्या हुआ, एक भाई भाई का हत्यारा बन गया। उत्पत्ति के तीसरे अध्याय में हम देखते किस प्रकार से पाप ने मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर दिया, परमेश्वर की उपस्थिति से अलग कर दिया, परमेश्वर पर संदेह डालने के द्वारा, और यहां तक कि पति पत्नी के बीच में मन मिटाव उत्पन्न कर दिया। ये सब कुछ हो गया, अब यहां पर परिवार बढ़ रहा है, लेकिन उस पाप का फल या पाप का बीज कैसे बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन फिर से मैं तीन अध्याय में आपको लाना चाहूंगा इस पद को जोड़ते हुए। आइए तीन अध्याय निकालिए, बार बार जरूरी है, मेरे लिए जरूरी है खासतौर से। तीन अध्याय में आइए, और तीन अध्याय में 15 पद में ध्यान दीजिएगा शब्दों पर, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, परमेश्वर उनसे क्या कह रहा है। मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, तेरे कौन, शैतान जो विरोधी है, और यह स्त्री जो हव्वा, इसके बीच में, तेरे वंश के बीच में, कौन, शैतान, उसके वंश के बीच में और इस स्त्री के वंश के बीच में, स्त्री, बैर उत्पन्न करूंगा। और ये दो लाइन, ये दो रेखा वहीं से आरंभ हो गई। ध्यान दीजिएगा, अभी हम आगे चलते जाएंगे तो और इसका खुलासे को देखते चले जाएंगे। ये दो लाइन वहीं से शुरू हो गई। धर्मी, अब हाबिल धर्मी है, वो एक लाइन है, कैन अधर्मी है, वो दूसरी लाइन है। जो आगे चलकर हम हवा के बारे में देखते हैं, जिससे यीशु आया, वो इसमें 11वें अध्याय में हम देखेंगे उसको किस रीति से वर्णन है उसका। इसलिए मैंने कहा 11वां अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट, 11 अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वो लाइन किस प्रकार से आगे बढ़ती है, तो दो लाइन है, दो रेखाएं हैं, दो वंशज हैं, और यही दो वंश आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अब यहां पर इस अध्याय में हम एक हाबिल के वंश को देखते हैं जो धर्मी है, दूसरा कैन को देखते हैं जो अधर्मी है। अब कैन क्या करता है, कैन हाबिल को घात कर देता है। उसने कैन ने हाबिल को मार दिया, क्योंकि उसके गेट भेंट परमेश्वर ने ग्रहण की थी, क्योंकि परमेश्वर के दृष्टि में धर्मी था। लेकिन उसके कारण ऐसा नहीं है कि अब धार्मिकता की रेखा जो है सदा के लिए समाप्त हो जाए, नहीं। लेकिन जैसे ही पांचवें अध्याय में आएंगे हम देखेंगे परमेश्वर फिर धार्मिकता की रेखा को चालू करता है, फिर परमेश्वर धार्मिकता की रेखा। और अब ये दोनों के बीच में स्त्री के वंश और शैतान का वंश, इन दोनों के बीच में द्वंद है जो आज भी हम संसार में देख रहे हैं। और ये द्वंद उस समय से शुरू हुआ और बढ़ता गया, चाहे सृष्टि दोबारा बनी, दोबारा फैली, जो कुछ भी हुआ बढ़ती गई, वो चलता चला जा रहा है। तो जब हम इस अध्याय में आते हैं, हम इस चीज को देखते हैं, यहां की शुरुआत है। जो आज पूरे विश्व में हम देख रहे हैं शुरुआत यही है। लेकिन जब जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, हम आगे बढ़ते जाएंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो यहां पर उसने मार दिया नवपद, फिर से प्रभु परमेश्वर से कुछ कह रहा है। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहां है? क्या परमेश्वर नहीं जानता था कि हाबिल कहां है? क्या परमेश्वर नहीं जानता था कि कैन ने हाबिल को मार दिया? परमेश्वर सब कुछ जानता था, परमेश्वर सब कुछ जानता था। लेकिन परमेश्वर फिर कैन से चाह रहा है, शायद अब भी कैन पश्चाताप कर ले, लेकिन नहीं। कठोरता, पाप मनुष्य को कठोर बना देता है, पाप मनुष्य को न केवल परमेश्वर से दूर कर देता है लेकिन कठोर बना देता है। उसका विवेक कठोर बन जाता है, उसका हृदय कठोर बन जाता है, उसकी भावनाएं कठोर बन जाती हैं। इसीलिए परमेश्वर आगे कहता है कि मैं पत्थर का मांस ने हृदय निकाल करके तुम्हें मांस का हृदय दूंगा, मनुष्य का हृदय पत्थर का हृदय। तब क्या क्या होता है, तेरा भाई हाबिल कहां है? और उसने कहा, मैं क्या जानूं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? क्या मैं अपने भाई, क्या नहीं जानता था उसने क्या कहा? कैन जानता था कि उसने भाई का घात किया है, लेकिन अब क्या कह रहा है? कह रहा है, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? मेरे प्रियो, ये ईर्ष्या परमेश्वर के वचन में श्रेष्ठ गीत में लिखा है कि वो ईर्ष्या जो है बहुत भयंकर है, वो क्या नाम से मृत्यु से भी ज्यादा कठोर है, मृत्यु से भी ज्यादा कठोर है। हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं श्रेष्ठ गीत उसका 8 अध्याय उसका 6 पद, ईर्ष्या अधोलोक के समान निर्दयी होती है। श्रेष्ठ गीत 8 अध्याय 6 पद, ईर्ष्या। अब यह ईर्ष्या कह रहा अधोलोक के समान निर्दयी होती है। अब क्या हो गया, ये भाई से भाई घृणा कर रहा है। परमेश्वर के वचन में आज हमने पहला योनास का 3 अध्याय को पढ़ा, पहला योनास का 2 अध्याय, पहला योनास का 3 अध्याय, पहला योनास का 4 अध्याय, बार बार इन बातों को वर्णन करते हैं। कहते हैं जो भाई से घृणा करता है वो अंधकार में चलता है, जो भाई से घृणा करता है वो झूठा है, जो भाई से बैर करता है वो हत्यारा है। हम कहेंगे हमने तो कोई हत्या नहीं करी, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है साफ। अब क्या हो गया था, इस कैन के अंदर वो पाप की ऐसी जड़ बस गई थी जो उसको नहीं निकाल पाया, और वो एक कदम के बाद दूसरा कदम, एक पाप के बाद दूसरा पाप करता चला जा रहा है। जब तक एक मनुष्य पाप का पश्चाताप नहीं करता, उसको छोड़ नहीं देता, एक पाप उसको बाध्य करता है, दबाव डालता है कि दूसरे पाप में आगे गिरे। वो मनुष्य पाप को पाप की ओर ले आता है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है, इब्रानियों के 12 अध्याय उसके 14 और 15 में सबसे मेल मिलाप रखते हैं उस पवित्रता की खोजियों जिसके बिना कोई भी परमेश्वर को कदापि नहीं देखेगा। और तब वो ऐसा कहा, ऐसा ना हो तुम्हारे बीच में से कोई कड़वी जड़ फूट कर निकले और बहुतों को अशुद्ध कर दे। जड़, आप नीम के पेड़ को अगर जब तक सोचते हैं कितना भी काटें, नीम की नीम कौली कड़वी होती है, नीम की पत्ती कड़वी होती है, नीम की खाल कड़वी होती है, नीम का बीज जो लगाइए वो कड़वा होता है, आप सोचे ठीक है अब नया होना चाहिए, अब नया होना चाहिए, इसलिए आप सब काट दें छाड़ दें। अगर आपको ये जाना है कि वो नीम परिवर्तित हो तो क्या करना पड़ेगा, आपको नीम को न केवल काटना होगा, ध्यान दीजिएगा, ना केवल नीम को काटना होगा लेकिन इसकी जड़ को खोदना होगा और उसकी जड़ को खोद करके जड़ को निकालकर फेंकना होगा और उस भूमि को पूरा बनाकर दोबारा बनाकर तब उसमें नया बीज आपको बोना होगा, तब वो उगेगा, नहीं तो नीम की कड़वाहट कभी खत्म नहीं होने पाएगी। और ये कार्य प्रभु यीशु मसीह कर सकते हैं, ये कार्य आज दुनिया में देखिए क्या है, कड़वाहट भरी पड़ी है, कड़वाहट भरी पड़ी है, धार्मिकता के काम करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, सारे कुछ करते हैं, संदेश देते हैं, सब कुछ करते हैं, सत्संग करते हैं, दिन भर रात भर सब बहुत होता है, रात रात 24 घंटे बैठते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कड़वाहट की जड़ है। पर प्रभु का धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह के लिए जिसने उसे संसार में मेरे और आपके लिए इसलिए भेज दिया ताकि उस पर विश्वास करने के द्वारा हमारा हृदय परिवर्तित हो जाए। वो जो पुराना हृदय है जिसमें पाप भरा हुआ है वो निकल जाए और तब परमेश्वर नए हृदय को डाल सके। सो यहां पर हम देखते हैं, अब उसके बाद कहता है क्या मैं भाई का रखवाला हूं, परमेश्वर एक और बात कहता है उससे, कहता है तूने क्या किया। जब अदन की वाटिका में आदम और हव्वा ने पाप किया था और परमेश्वर शाम को अदन की वाटिका में आए थे उनसे मिलने के लिए और वो अपने आप को छिपा रहे थे, तो परमेश्वर ने वहां पर भी आदम और हव्वा से क्या कहा था, यही वेदना शब्द थी, तूने क्या किया, हे आदम हे हव्वा तूने क्या किया। और वही वेदनापूर्ण परमेश्वर यहां पर इससे कैन से कह रहा है। परमेश्वर तो उपाय करने वाला परमेश्वर है लेकिन परमेश्वर ही जान रहा है कि इसके द्वारा वो तो अपना काम करेगा, वो तो अपना धार्मिकता का बीज उगो देगा, वो तो सब कुछ कर देगा, धार्मिकता के वंश को बढ़ा देगा, लेकिन कैन क्या होगा, कैन कहा मेरे प्रिय। इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह को यहूदा ने पकड़वाया तो यहूदा के पकड़वाए जाने के लिए बाद प्रभु ने कहा भला होता कि इसका जन्म ही ना होता, क्यों, परमेश्वर उसके विनाश से दुखी था, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी प्राणी जो पाप करे वो नाश हो जाए परंतु हर एक को मन फिराव का अवसर प्रदान हो और वो पश्चाताप करके परमेश्वर के राज में प्रवेश कर सके। उसका हृदय पापी के पाप के कारण उसके विनाश के कारण दुखी होता है, ऐसा हमारा परमेश्वर, ऐसा हमारा परमेश्वर। तूने क्या किया, तेरा भाई का लहू भूमि में चिल्ला कर तेरी दुहाई दे रहा है और अब तू, तब परमेश्वर ने इसको भगोड़ा ठहरा दिया, कैन को भगोड़ा ठहरा दिया। और तब परमेश्वर कहता है कि अब तू भूमि की ओर से शापित है जिसने तेरे हाथ से तेरे भाई का लहू पीने के लिए अपना मुंह खोला है, अर्थात जब तूने उसकी हत्या करी उसका लहू भूमि के अंदर गया है। अब ध्यान दीजिए इस पाप का परिणाम क्या हुआ, कैन का वंशज कैसे बढ़ रहा है लेकिन उसके साथ क्या हो रहा है इसको हमें समझना है। वो कह रहा है कि जब तू भूमि पर खेती करेगा वो तुझे अपनी पूरी उपज ना देगी, तू पृथ्वी पर आवारा और भगड़ा होगा। तीन बातें, वो परमेश्वर से अलग हुआ, भूमि उसके लिए शापित हो गई, तीसरी बात वो परिवार से भी अलग हो गया, तू परिवार से भागता फिरेगा। लेकिन तब कैन यहां पर एक बात कहता है, पश्चाताप नहीं करता, लेकिन तब कैन का अब उसको अपनी चिंता होती है, दूसरे की हानि से मैं चिंता नहीं होती लेकिन जब कोई हमारी हानि करता है तो मैं बहुत चिंता होती है, तब हमें दर्द होता है, तब हमारे अरे मेरे साथ ऐसा हो गया। अतः वो क्या कह रहा है, तब कैन ने यहोवा से कहा मेरा धन सहने से बाहर है, अरे मैं भगोड़ा रहूंगा, मेरा धन सहने से बाहर है, देख तूने तो आज मुझे भूमि पर खदेड़ दिया है, मैं तेरी उपस्थिति से भी हटा दिया जाऊंगा और पृथ्वी पर आवारा और भगोड़ा रहूंगा और ऐसा होगा कि जो कुछ मुझे पाएगा वो मार डालेगा। अब उसको अपने प्राण बचाने पड़ रहे हैं। जब उसने भाई की हत्या की थी तो उसको चिंता नहीं थी कि भाई की हत्या कैसे हो रही है, उस समय चिंता उसके भाई के प्राण की चिंता नहीं थी। और कई बार हम अपने जीवन में दूसरों की हानि पहुंचाने के लिए चिंता नहीं करते, अपने लिखाई से, अपने पत्रों से, अपने मोबाइल से, फोन से, किसी से भी। आज सुबह सुबह मेरे पास एक व्हाट्सएप में एक मैसेज आ गया और कानपुर के एक पास्टर ने किसी पास्टर के बारे में, दूसरे पास्टर के बारे में फेसबुक में बहुत उल्टी उल्टी बातें लिखी। अब ये पास्टर जाके इसने पुलिस में FRI कर दी, कंप्लेन कर दी, और जिसने ये लिखा था अब उसको पुलिस में बुलाया गया। अब वो केवल पास्टर नहीं है, बिशप है। अब आप पुलिस में बैठ करके सबके सामने वो माफी नामा लिख रहा है कि मैंने गलत किया है, अब मैं इनके खिलाफ, उनके खिलाफ और किसी के खिलाफ, पुलिस वाले लिखवा रहे हैं, नहीं तो उसको जेल में डालने के लिए तैयार है। जब वो दूसरों की हानि कर रहा था उसको कोई चिंता नहीं हुई थी, जब उसके गले फंस गई तब उसको परेशानी हो गई। आज ये संसार है, आज ये संसार है। मेरे प्रियो हमें सावधान रहना है, हमें सावधान रहना है। ये नहीं कि हम गलत का सामना ना करें, ये नहीं कि हम सच्चाई के साथ न्याय ना करें, ये नहीं, लेकिन अननेसेसरी हम दूसरे की हानि करने से बच जाएं, हमें सावधान होना है। कई लोग बड़ी सरलता से किसी के विरोध में पत्र लिख देते हैं, आजकल तो पत्र का जरूरत नहीं है, आजकल तो कंप्यूटर का जरूरत, ये पाप है। और यहां पर हमें देख रहे हैं, तब क्या हुआ, देख तूने आज मुझे वो खदेड़ा है, 15 पद में, अतः यहोवा ने उससे कहा इस कारण जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला दिया जाएगा, और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। फिर भी परमेश्वर ने दिखा दी, हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, वो अपराधों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। ये नहीं कि उसका सब कुछ बदल नहीं गया, लेकिन उसने उसको घात किए जाने से बचा लिया। पर क्या था इसका भी एक कारण था, ताकि इसके वंश से जो आगे कुछ घटनाएं हम देखते हैं उसको हम देख सके और वो आगे बढ़ सके। हमें पर कैन को परमेश्वर सिखा रहा है, कैन को परमेश्वर में से। सो चौथे अध्याय में बातों को देख रहे हैं, तो हाबिल की मृत्यु हो गई, अर्थात एक धार्मिकता की लाइन क्या हुई, जो आरंभ हुई थी वो खत्म हो गई। लेकिन अब उसके बाद अब पाप से पाप कैसे बढ़ रहा है देखिएगा। तब कैन ने, कैन यहोवा की उपस्थिति से निकल आया और आदन के पूर्व में नोद नामक देश में जाकर बस गया, और कैन अपनी पत्नी के पास गया और वो गर्भवती। अब कैन के उसके बाद संतानें उत्पन्न हुई, हनोक उत्पन्न हुआ, इराद उत्पन्न हुआ, मयाज उत्पन्न हुआ, मतुशेल उत्पन्न हुआ, लेमेक उत्पन्न हुआ। लेमेक के बारे में देखिए 18 पद, और हनोक और इराद उत्पन्न हुए, और इराद ने महुएल को उत्पन्न हुआ, और महुएल से मतुशेल उत्पन्न हुआ, और मतुशेल से लेमेक उत्पन्न हुआ। अब देखिएगा 19 पद, और लेमेक ने 2 स्त्रियां ब्याह ली, उनमें से एक का नाम आदा और दूसरी का नाम सिल्ला था। क्या हो रहा है यहां पर, परमेश्वर की एक विधि, परमेश्वर की एक व्यवस्था तोड़ी जा रही है। एक स्त्री एक पुरुष, दूसरे अध्याय में आदम हवा पति पत्नी होंगे और वे एक साथ रहेंगे, एक तन होंगे, एक स्त्री एक पुरुष के लिए, एक स्त्री के लिए एक पुरुष। ये विवाह के पवित्रता को तोड़ा गया, ये पाप का परिणाम, पाप का कारण है। और क्या हुआ यहां पर, ना केवल पुरुष इसमें शामिल है लेकिन स्त्री शामिल है। सिल्ला ये जानती थी कि लेमेक कने के विवाह हो चुका है और उसका, उसके विवाह में उसके पास ऑलरेडी पत्नी है, और ये भी जानती थी कि लेमेक का स्वभाव क्या है, लेमेक का नेचर क्या है, जो उसको आगे चल के देखेंगे उसके कार्य क्या है, तब भी इस स्त्री ने उससे जाकर विवाह करने के लिए तैयार हो गई। तो जब हम विवाह की बात करते हैं तो केवल पुरुष ही पुरुष दोषी नहीं होता, उसमें स्त्री भी दोषी होती है। और इसलिए अन्य जातियों के समान हमें अन्य जातियों से नहीं विवाह करना, नहीं जोड़ना, सावधान होना। अगर आपके पास एक स्त्री पत्नी है, आप उसके साथ जीवन व्यतीत करिए, घर को छोड़कर के दूसरे के बोझ को ना बांटिए। कई बार हमारे भाई लोगों को अपनी पत्नी में कम बोझ रहता है, दूसरे के लिए ज्यादा बोझ लगते हैं, उनका दुख ज्यादा बांटते हैं। कई बार बहनें भी होती हैं, वो भी होती हैं, अपने पति की चिंता नहीं करती, दूसरे के लिए खाने पहुंचा दे रही हैं, कहीं ये कर दे रही, कहीं कर दे रही, स्वभाव है ये। लेकिन सावधान होना है, सावधान होना। और इसलिए यहां पर ना केवल ये हुआ, लेकिन और आगे देखिए क्या था। तब आगे चल करके आधा ये सब कुछ हुआ 21 पद में, और उसके भाई का नाम याबल रखा गया। मैंने कहा था कि आदम से लेकर 10 पीढ़ी हैं। और सिल्ला ने उबेल को जन्म दिया, वो कांस सा। अब यहां पर अब कुछ व्यवसाय शुरू हो गया। पहला व्यवसाय 20 पद में, उसने याबल को जन्म दिया, वो उन सब लोगों का पूर्वज जो तब्बो का निवास करते हुए और पशु पालन करते थे, हो गया 21 पद में। और उसके भाई का नाम याबाल था, और वो उन सब लोगों का पूर्वज हुआ जो वीणा और बांसुरी बजाते थे। अब यहां पर साज बजाने वाले तैयार हुए, साज बजाने वाले। ये इसमें टाइम है, पीरियड है, वर्ष का है। मैंने कहा करीब 2000 का समय पूरा लगा है, तो कई साल निकलते जाए, एकदम तुरंत नहीं हो रहा है। तब उसके बाद 22 पद में, और सिल्ला ने भी तूबल कैन को जन्म दिया, वो कांसा और लोहे का सब प्रकार की वस्तुओं का बनाने वाला निकला। पहला तंबू का बनाने वाला हुआ 20 पद में, दूसरा म्यूजिक छाज बजाने वाला हुआ 21 पद में, तीसरा जो है वो अब कांसे की वस्तुओं को इन सब कुछ का बनाने वाला हो गया, ठीक है। अब 23 पद में, और लेमेक ने अपनी पत्नियों से कहा, दोनों से कहा, हे आदा और हे सिला, मेरी बात सुनो, हे लेमेक की पत्नियों, मेरे वचन पर ध्यान दो। मैंने एक पुरुष को जिसने मुझे घायल किया था, अर्थात एक जवान को जिसने मुझे चोट पहुंचाई थी, मार डाला। क्या हो गया यहां? एक और पाप बढ़ गया। ना केवल कैन हत्यारा निकला, लेकिन कैन का बेटा भी, पोता और ये सब उसके वंशज के, वो भी उसने भी हत्या कर। स्त्री को आया, और यही लगभग पीरियड था। और तब वो कहता है, यदि कैन का बदला 7 गुना तो लेमेक का 70 गुना चुकाया जाएगा। अब उसके अंदर भी सो ये वंशज है। यही कारण था, जब हम 5वें अध्याय में आएंगे और जब 6ठे में पहुंचेंगे, यही कारण था कि परमेश्वर ने किस प्रकार से पहले सारी सृष्टि को नाश कर दिया था और किन को बचा के रखा था, हम आगे देखेंगे। सो क्या हो रहा है, पहले दूसरे अध्याय में सृष्टि हुई, तीसरे अध्याय में हम इस बात को देखते हैं किस तरह से पाप आया और पाप ने क्या करा, चौथे अध्याय में हम इन हाबिल को और कैन को देखते हैं। आपको ताजो होगा जब हम इन कैन के बारे में पढ़ते हैं, तो इस पूरे अध्याय में करीब 13 बार कैन का नाम शब्द आया है, 3 बार भाई शब्द आया है, लेकिन 13 बार कैन का नाम शब्द आया है। अब यहां पर एक पीढ़ी की कहानी खत्म होती है। 5वें अध्याय में हम दूसरी घटना को देखेंगे, हम यहीं पर छोड़ेंगे, 25 अध्याय से आगे, 25 पद से आगे बार देखेंगे। लेकिन इस 4थे अध्याय में पहली बात क्या, हम आज हमारे लिए क्या शिक्षा है, पहली शिक्षा यह है, कर परमेश्वर भेंट चाहता है, परमेश्वर मुझसे और आपसे भेंट चाहता है, पर वो मेरे और अपने मन के अनुसार नहीं, लेकिन परमेश्वर के हृदय के अनुसार होना है, मेरे और अपने मन के अनुसार नहीं, लेकिन परमेश्वर क्या, वो भेंट मुझे संतुष्ट नहीं करने चाहिए, लेकिन परमेश्वर को संतुष्ट करने चाहिए। कई बार हम अपने देने के द्वारा स्वयं संतुष्ट होते हैं, हम कभी भी पूरा पर्याप्त पूरा नहीं दे सकते, सब कुछ को लुटा दे तब भी नहीं। आपको मालूम है एक संस्था यहां पर है, वेक मिशन करके जिसने बेदल चर्च आरंभ करा था बहुत पहले, और मैं उसमें बहुत जुड़ा रहा। उनके जो स्थापक थे सीटी स्टड, वो क्रिकेट के, इंग्लैंड के क्रिकेट के बहुत बड़े खिलाड़ी थे, और उनके जब विवाह की बात आई तो उनकी होने वाली पत्नी वो भी विश्वासी थी, और ये लोग आपस में विवाह क्या नाम से करने तैयार थे। तो दोनों ने आपस में बात करी, और मैं नाम भूला उसकी वाइफ का, तो उन्होंने उसकी पत्नी ने, होने वाली पत्नी ने कहा कि स्टड तुम मेरे से शादी करना चाहते हो? हाँ मैं शादी, तुम तैयार हो? तैयार, सारी बात पक्की हो गई, सब कुछ है, डेट निश्चित हो रही है। उसने कहा कि अगर तुम मुझसे, तुम्हारे पास कितना पैसा है? उसने कहा मेरे पास इतना पैसा है, ये इसको दे दिया, इसको दे दिया। उसने कहा सब पैसा दान कर दो, सब पैसा दान कर दो। उन्हें दान दे दिया, सब कुछ कर दिया। फिर शादी करने का समय निकट आया, उसने पूछा, उसकी होने वाली पति ने पूछा, स्टड क्या तुमने सबको पैसा दान दे दिया? कहा मैंने सब दान दे दिया, लेकिन मैंने कुछ पैसा रखा है अपने विवाह के लिए, मेरे तुम्हारे विवाह के लिए। उसने उनसे कहा कि अगर तुम मुझे चाहते हो तो ये पैसा भी दे दो, या मुझे ले लो या पैसे को रख लो। और सिटी स्टड ने सब कुछ परमेश्वर को दान दिया। इंग्लैंड के 7 बड़े प्लेयर में 7 भाई थे वो लोग, और पहला क्रिकेटर था वो, कैप्टन रहा वो, उसकी स्लिप पड़ी है सिटी स्टड की, जो मैंने एक बहन को दी थी पढ़ने के लिए। और तब उसके बाद परमेश्वर ने उनको विवाह के बाद बहुत ऐसे किया, और जो आज लगभग विश्व की 136 देशों में उनकी संस्था काम कर रही है। कैसे हम किस प्रकार से परमेश्वर को आज देते हैं? दूसरी बात, परमेश्वर मुझे और आपको अवसर प्रदान करता है कि हम पश्चाताप करें और लौट आए। क्या हम उसके बारे में गंभीर हैं? क्या हम उसको गंभीरता से लेते हैं? हलचल मस्ती है, खत्म हो जाती है। मैं कई बार बोलता हूं, हमारा मसीह जीवन, आपने देखा होगा रास्ते में हमारे लखनऊ शहर में कभी पुल से उतर चले जाइए और ढेर सारे पत्ते पड़े रहते। एक ट्रक आता है, झोंका लगता है, जैसे ही ट्रक निकल के जाएगा सारे पत्ते उड़ जाएंगे। ट्रक निकल गया, धीरे 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 पत्ते बैठ गए। फिर दूसरा ट्रक आया, थोड़ी देर बाद दूसरी गाड़ी आई, फिर झोंका लगा, फिर उड़ने लगे, फिर बैठ गए। कई बार मसीह जवानों साथ कैंप में आए, बड़े जोश में रहे, प्रभु ग्रहण किया, दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, डिवोशन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, धीरे 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 फिर दूसरे साल कैंप में आएंगे, फिर दूसरे साल कॉन्फ्रेंस में आएंगे, फिर दूसरे साल सुनेंगे, फिर उड़ने लगेंगे। पापा मामा देखेंगे, अरे डिवोशन कर रहा मेरा बेटा, मेरी बेटी ये कर रही, वो कर रही, ये कर रहा। बड़ों के साथ भी यही है, हिलेंगे कुछ देर, हिलेंगे उसके बाद फिर वैसे बैठ जाए। मेरे प्रियो, हमें उन सूखे पत्तों के समान नहीं बनना जो सड़क पे गिरे रहते, हमें उन पत्तों के समान बनना है जो बहती हुई नालियों के किनारे जो वृक्ष लगाया गया है, हर ऋतु में फलता है, उसके समान बनना है। ये हमें पढ़ना, ये परमेश्वर सिखाना चाहता है। पाप हमारे जीवन को बर्बाद करता है, हमें पश्चाताप करना है। और तीसरी और अंतिम बात, परमेश्वर की धार्मिकता का अंत कभी नहीं होता। परमेश्वर की धार्मिकता का अंत कभी नहीं होता। वो सार्वभौमिक परमेश्वर अपनी योजना कार्य आदि से पूरी करता चला आ रहा है, और वो पूरी करेगा मेरे जीवन में, आपके जीवन में, संसार के जीवन में, संसार के इतिहास में, सब में। वो सार्वभौमिक परमेश्वर, सार्वभौमिक, उसकी धार्मिकता का अंत नहीं होगा। मेरे प्रियो, अब मुझे और आपको क्या करना है? अंत में मुझे और आपको चुनाव करना है, क्या हम धाबिल के समान होंगे या हम कैन के समान? क्या हम कहेंगे परमेश्वर मुझे धार्मिकता का जीवन दीजिए जो हाबिल का था, मुझे कैन के जीवन से बचा के रखिए ताकि मैं उसे बच करके धार्मिकता के जीवन को व्यतीत कर सकूं। ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, ये हमारी चाहना होनी चाहिए, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। इसके लिए हमें मेहनत करनी चाहिए, इसके लिए हमारे समर्पण करना चाहिए। हमारा चुनाव आज सुबह क्या है, आइए हम प्रार्थना।